اور مہارت میں کامیابی کے لیے پہلی ضروری چیز تو نیک پاک جیون کا ہونا, سداچاری جیون کہو, نیک پاک جیون کہو, ایتھیکل لائف کہو. جب تک زمین نہ بنے گی مکان کیسے بنے گا؟ تو برہمچرج کی رکشا یہ پہلا لوازمہ ہے جو پرماتما میں کامیاب ہونے کے لیے نہایت ضروری ہے. یسوع مسیح صاحب نے یہ کہا, بلیسڈ آر دی پیور ان ہارٹ فار دے شیل سی گاڈ. وہ ہردے مبارک ہیں جو پتر ہیں, کیونکہ کیول ایسے ہی لوگ اس پربھو کو دیکھ سکیں گے, دوسرے نہیں. جب تک ہردہ صاف نہ ہو تب تک اس میں اس مالک کی جھلک کیسے آ سکتی؟ پرماتما کہیں پہاڑوں, جنگلوں, بیابانوں یا آسمانوں پر نہیں ہے, وہ تمہاری آتما کی آتما ہے, گٹ گٹ میں ہے. سب مہاتما یہی پکار پکار کر کہتے رہے, کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے, گٹ گٹ میں ہر جو بسا سنتم کیو پکار, گٹ گٹ میں وہ ہری بس رہا ہے. سب سنت یہی پکار پکار کر کہتے رہے, اگر وہ گھٹ میں ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہمارے ہردے کی زمین میلی ہے. جب تک ہردہ صاف نہیں ہوگا کام نہیں بنے گا. اس ہردے کی صفائی کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا. جو معمولی سے ایک افسر نے آنا ہو اس کے لیے ہم کتنی صفائی کرتے ہیں. باہر جو مندر ہم نے بنائے ہیں اپنے ہاتھوں سے, ان کی کتنی دیکھ بھال جھاڑ پوچھ کرتے, روز صاف کرتے. صرف ایک خیالی چیز بنائی گئی کہ پرماتما کی جگہ. ارے بھائی, جہاں سچ مچ پرماتما پرگٹ ہو کر بس رہا, اس کی کبھی صفائی کا خیال آیا؟ سو جب تک من کہو یا دل کہو, نفس کہو, یہ صاف نہیں ہوگا اور استھرتا اس میں نہیں آئے گی, اس مالک کی جھلک اس میں ظاہر نہیں ہے اب بھی, مگر ہمارے ہردے کی زمین میلی ہے. اس لیے وہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے اندر اس کی جھلک نہیں محسوس ہوگی. جن کی ہردے کی زمین صاف ہو گئی وہ یہی کہتے ہیں کہ مالک تمہارے گھٹ میں, تمہارے انتر والے بھائی آنکھ کو کھول اور دیکھ. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن چکائی دیکھ. ہے تو سب میں, کسی کے ہردے کی زمین صاف ہے, کسی کی ابھی میلی ہے. میلے ہردے کو وہ نظر نہیں آتا, بات اس میں ہے. تو آج آپ کے سامنے اسی من کی صفائی کے لیے کیسے ہو سکتی ہے, ان مہاپرشوں نے جو اس رستے میں گئے ان کو اس کا کیا کچھ تجربہ ہوا اور اس کا کیا علاج بتلایا ہے, اور ان کو اپنی زندگی میں اس کا کیا تجربہ ہوا ہے, اس کا ذکر ہے سب مہاتماؤں نے کیا. آج آپ کے سامنے شری گرو امرداس جی صاحب کی بانی کا ایک شبد رکھا جائے گا. آپ کو پتا ہو اتہاس یہ بتلاتا ہے کہ 70 سال کی آیو تک وہ اسی تلاش میں رہے. پیروں ننگے ہر سال ہریدوار یاترا کو جایا کرتے تھے, پیروں ننگے. کتنی بھاونا جو ہر سال جاتے رہے, بتاؤ کس لیے؟ کوئی سیر تفریح کے لیے تھوڑا تھا, کسی ایسی چیز کی تلاش تھی جس جو انتر میں ان کے انتر کرید اٹھ رہی تھی جس کی, مگر چیز نہیں ملی. وہ کون سی چیز ہے جس کے پانے سے سب کچھ پایا ہوا ہو جاتا؟ وہ ابھی نہیں ملی. جب گرو انگد صاحب کے چرنوں میں آئے ہیں ان کو اس بات کی سوجت ہوئی, پراپتی ہوئی, اس کو پا کر سنتشٹ ہوئے, حقیقت کو پایا, پھر کھول کھول کر سمجھا دنیا کی ہر آیت کے لیے. تو شری گرو امرداس جی صاحب کا شبد ہے جو آپ کے سامنے اب آ رہا ہے, غور سے سنیے. ہماری ہی درد کی دوا, ये एक ऐसी बीमारी है मन की जो सबको लगी पड़ी। उपनिषद ये कहते हैं शरीर रूपी रथ में आत्मा सवार है, शरीर रूपी रथ में आत्मा सवार है, बुद्धि उसकी रथवान है, मन लगाम है और इंद्रिया रूपी घोड़े उसको भोगो रूपी खेतों में खींचे फिरते। हमारा आत्मा मन के अधीन इंद्रियों के घाट पर बाहर लंपट हो रहा बात है। अब मन को क्या बीमारी है इंद्रियों की, और आत्मा मन दोनों इस वक्त एक हो रहे हैं, जीव बन रहा है ये, इसके बाहर वक्त ये बाहर फैल रहा है। जब तक ये बाहर फैलाव में है इसके अंतर जो हकीकत है इसको नजर कैसे आ सकती है। तो श्री गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं मनुआ दैद स्थावदा हो कैसे हर गुण गावा है, ये मन तो दस द्वारों में भाग रहा। ऐसा इंसान जिसके मन की ये हालत है वो हरि के गुण कैसे गा सकता। मन टिकाओ में आए तो गाने का स्वाद भी आए। गुरु नानक साहब ने फरमाया जहां का दिल साबित नहीं तां को कहां खुदा, जिसका दिल ही साबित नहीं उसको खुदा की बात क्या कहे। दुनिया में भी देखो को बहुत इंसान जब डावा डावल होता है कहला भाई मेरा दिल ठिकाने नहीं मुझे क्या कहे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तुम क्या कहते। तो दिल का साबित करना कहो, मन का खड़ा करना कहो, नफ्स का काबू करना कहो, सब एक बात। कुरान शरीफ में ये आया अरबहू नफ्सहू अरबहू रबहू, जिसने नफ्स को पहचान लिया पक्ष पहचान लिया उसने अपने रब को। नफ्स का दिल की हालत की कैफियत का जान कर उस पर काबू पाना जो है ना ये मालिक के पाने का पसीना, यही एक और मुसलमान फकीर ने कहा घर तो दारी दर दिले खुद अजम रफ्तन सूए दोस्त, अगर तू अपने दिल के अंतर उस मालिक के मिलने का जबरदस्त पक्का मुसम्म इरादा रखता है तो क्या कर। यक कदम बर नफ्स खुद ने दीगरे दर को ये दोस्त, एक कदम तो अपने नफ्स पर रख और दूसरा कदम जो तुम लोगे वो उस प्रीतम की गली में पहुंच जाए। यही गुरु नानक साहब ने कहा मन जीते जग जीत, जिसने मन को जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। समझे तो मन का काबू करना ये पहला कदम है परमार्थी में नहीं बल्कि हर एक काम में कामयाबी के लिए। अब सवाल ये आता है कि मन को क्या बीमारी है, तो गुरु अमरदास साहब फरमाते हैं मनुआ दैत स्थावदा, ये तो दस द्वारों में दौड़ रहा है, जो मन भाग रहा है दौड़ रहा है उसके साथ स्वत और मन उसके स्वत उसके ताबे है। तो ऐसे मन के साथ तुम हरि के गुण कैसे गा सकते हो। जबान से तो तुम एक चीज पढ़ रहे हो, मन कहीं और तरफ भाग रहा। ऊपर से तो हम सजदे करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, पूजाएं करते हैं, मन कहीं और अड़ रहा, दिल में बुतों की याद। हैरान है कि ऐसे लोग उस प्रभु की नमाज या पूजा क्या करते हैं, जिनके दिल में दुनिया बस रही है, बाल बच्चे बस रहे हैं, स्त्री दोस्त रुपया पैसा जायदादें बस रही हैं, बैठे जाहिरदारी तो मालिक की याद में है, बताओ ऐसी पूजा और पाठ क्या करेगी। दिल का ठिकाने होना, यकसू होना, एक जगह एकत्र होना, सब तरफ से हट उठाकर जिस जो मजमून वाहिद सामने है उसमें मैं हो जाना, ये पहला कदम। यही कबीर साहब ने कहा, फरमाते हैं मन समुद्र लख ना पड़े उठे लहर अपार, ये मन रूपी समुद्र है, इसमें अपार लहरें उठ रही हैं, कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, अनेकों लहरें उठो, हर वक्त उठ रहे। जब तक मन स्थिर न हो काम नहीं बनता। दिल दरिया सब रख बिना कौन लगावे पार। जैसे दिल को अबूर किया कोई समर्थ पुरुष, अगर उसकी सोबत मिल जाए तब मुमकिन है कि ये भी पार हो जाए, मन को खड़ा कर सके, नहीं तो कैसे कर सकता। जिसने काम करके देखा है, मन के हाथों माफ करना हमारे इतिहास भरे पड़े हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा रोते चले गए, मिसालें देने की जरूरत नहीं। हमको अपनी तरफ नजर मारनी चाहिए, हमारी क्या गति है, हम सुबह से शाम तक रो रहे हैं। आलमों से जाकर पूछो, बड़े बड़े लेक्चरारों से जाकर पूछो, कथाई ज्ञानियों से जाकर पूछो, अरे भाई तुम्हारी क्या हालत है, वो रो रहे हैं। बट क्या ये अलहदा बात रही कि जाहरा मुंह से वो माने या ना माने, मैं बैरक सब होते खास। तो मन को ये लहरें जो आती हैं किस तरफ से आती, इंद्रियों के घाट से आती। जब तक इंद्रिय दमन ना हो, इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार होता है। ये उपनिषद कह रहा है, सब बात एक ही कहते हैं। तो मन का खड़ा होना ये सबसे पहला कदम, पहले मन प्रबोधो अपना पाछा अवर रिझाओ। चल पहले हमने मन को काबू करो भाई, फिर दूसरों को कहो भाई ऐसा करो वैसा करो। जिसका अपने ही मन काबू नहीं, दूसरों को क्या उपदेश देता है वो। रिफॉर्मर्स, वांटेड रिफॉर्मर्स, रिफॉर्मरों की बड़ी भारी जरूरत है भाई। कैसे रिफॉर्मरों की, नॉट ऑफ अदर्स बट ऑफ देमसेल्व्स। ऐसे रिफॉर्मर जो दूसरों को उपदेश नहीं दे बल्कि अपने आप को उपदेश देने वाले हों। तो कहते हैं तनख्वाह क्या मिलेगी, गॉड हेड डिविनिटी रूहानियत, अंतर में जाग उठेगा उस प्रभु में, ये उसको तनख्वाह मिलेगी। तो ये मन एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्त करते, भावे विषय को। मन एक वक्त एक काम करेगा, खाए तो लगा लो, खाए तो लगा लो। मन कनेक्टिंग लिंक है जिस और आत्मा के दरमियान। ये इतना सूक्ष्म है कि आत्मा के साथ जुड़ जाता है, और इतना स्थूल है कि जिस्म के साथ जुड़ जाता। अगर मन का रुख जिस्म, जिस्मानियत, बाहरी फैलाव की तरफ हुआ, ये दुनियादार बन गया। अगर मन का रुख आत्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ हो गया, ये रूहानी पुरुष बन गया। इसके रुख के बदलने का सवाल है। साईं बोले शाह जब शाहनायक के पास गए हैं, यही सवाल किया कि महाराज वो परमात्मा कैसे मिलता। तो कहने लगे साईदा की पावना इधरो पटना तो उधर लाऊना, रुख का बदल नहीं है ना, मन के घाट का बदलना है। अगर इंद्रों का घाट रहेगा ये बाहर फैलाव में रहेगा, इसके अंदर हकीकत मौजूद है वो छुपी रहेगी। एक बच्चा हो, एक मकान में है, उसकी बहुत सारी खिड़कियां हैं, वो बाहर झांक रहा है, कभी एक में, कभी दूसरे में लटक रहा है, कभी तीसरे में लटक रहा है बाहर तरफ। बताओ उसके अंतर जो चीज बस रही है उसको वो कैसे जानेगा। इसीलिए कबीर साहब ने फरमाया, नाव कर देख जो कांवड़ भूली, बस अनूप न पाए। नाव घरों को देख कर जो रू रूपी स्त्री भूल रही है, बाहर फैलाव में जा रही है, इसके अंतर एक अनूप बस था, ये उसको पा नहीं सकता। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो हर एक इंसान को लगी पड़ी है। इसको क्या करना है, एक वक्त एक काम करना सीख जाओ। भजन के वक्त भजन करो, प्रभु की याद के वक्त प्रभु की याद में बैठो, किसी को मिलने बैठे हो तो सारा वक्त तवज्जो देखो उसके पास बैठो, हजूरी दिल। गुरु नानक साहब को काजी के पास पेश किया गया कि महाराज ये कहता है सब हिंदू मुसलमान एक हैं, इनको कौन नमाज पढ़े चलकर। उन्होंने कहा बहुत चचा मस्जिद में ले गए, नमाज पढ़ने लगे। काजी साहब भी वहां थे, मौलाना साहब आगे जो नमाज पढ़ा रहे थे वो भी थे वहां। सब खड़े हो गए नमाज पढ़ने को, गुरु नानक साहब भी खड़े हो गए, मैं नमाज नहीं पढ़ी। वो जो साथ के जाने वाले थे उनकी नजर नमाज में कहां थी, ये थी कि ये पढ़ते हैं कि नहीं, बात तो यही थी। जब नमाज पढ़ी गई तो लोगों ने कहा काजी साहब देखो इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, ये कहते हिंदू मुसलमान है, कहते नमाज क्यों नहीं पढ़ी। पूछने लगे भाई मैं किसके साथ पढ़ता। चले मौलाना साहब आगे नमाज पढ़ा रहे थे, उनके साथ पढ़ना था। चले वो तो घर में घोड़ी उसका बच्चा था, बछेरी थी, इस फिक्र में थे कहीं कुएं में न गिर जाए। जरा काजी साहब और अकड़े कहे हमारे साथ पढ़ लेना था। अरे भाई तुम तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। तो हजूरी कलम ये बड़ी भारी चीज, जिस काम में बैठो फुल होली एंड सोली डिवोटेड बैठो, यक्षु होकर बैठो, कामयाबी होगी, हर एक काम में कामयाबी होगी। इस राज को हम भूल गए, बैठे हैं खाने को याद बाहर की आ रही। दो लड़के थे, एक लड़का कहे मैंने गिरजे में जाना, दूसरे कहे नहीं बाहर खेलने को जाना। दोनों धुन के पक्के थे, एक गिरजे को चला गया एक खेलने को चला गया। जो खेलने गिरजे में था वो सोचता ये था कि अब मेरा वो दोस्त गया है, वहां बैठा होगा, वहां पूजा होती होगी, हाँ ऐसा होता होगा। था खेल मैदान में, मस्जिद था धर्म स्थान में। दूसरा जो बाहर खेल में जा रहा था उसकी तो ये कैफियत थी, जो धर्म स्थान में गया था वो क्या मेरा दोस्त अब खूब खेल रहा होगा, बैठा तो कहां था ख्याल कहां। अरे भाई कौन सा इंसान अच्छा रहा। इसे तो ये कहोगे कि जो मैदान खेलने में था वो वहां बैठा चित को उसका वहां था। जो जाके मन में बसे सो किसी के पास। तो हमारे यक्षुय कल्प चाहिए, मन की एकाग्रता चाहिए, इसके बगैर काम नहीं बनेगा। और इस मन को एक ही है, मन के मारे बन गए, मन के जिन्होंने मन को मार दिया वो तो बन गए इंसान बन गए, जिन्होंने मन को नहीं मारा खाए वो वन में रहते हैं या बस्ती में रहते हैं कहीं भी रहते हैं, हर सूरत में मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माँ है। खैर बस्तियों को छोड़कर जंगल में चले जाए या बाहर रहें, कहे कबीर क्या कीजिए ये मन ठहरे ना। सवाल तो जंगल में जाओ तो भी यही काम करना है, घर में रहो तो भी ये करना। महात्मा ये आपको नहीं कहते जंगलों में जाओ, वो कहते जहां कहीं भी हो वहां अपने मन को काबू करो। मन काबू आ गया तो काम बन जाएगा, अगर मन नहीं काबू आया तो फिर कई लोग खाली पढ़ने लिखने में बड़े होशियार रहते हैं, चलो मन का काबू करने को कोई उपाय हो जाए। पढ़ना गुणना चातुरी ये तो बात सहल, पढ़ना गुणना चतुराई करना बातें बनाना जमीन आसमान के कुलाबे मिलाकर लोगों को बयान करना, कहते ये तो आसान बात। कहते मुश्किल बात कौन सी है, गगन चढ़न मन बसीकरण, यही बात मुश्किल। मन को बस करना, रूह का सिमट कर गगन की ऊपर आना, यह बात मुश्किल। जब तक मन काबू न रूप इनको कैसे छोड़ती, जो मन इंद्रियों के घाट पर फैल रहा है उस हर वक्त लंपटता है कि हमें चीजें कौन सी आती हैं जब बैठते हैं भजन में, वही चीजें जो इंद्रियों के घाट से देखी हैं या भोगी हैं। तो इस मन को बीमारी क्या लगी पड़ी, खुद ही गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं आगे, इंद्री व्याप रही अदकाई काम क्रोध नित सतावर। इसको इंद्रिय व्याप रही हैं, इंद्रिय, एक एक पांच कर्म इंद्रिय हैं, पांच ज्ञान इंद्रिय हैं। ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों के जरिए काम करती हैं, चीजें की कुर्ते बिना ही आंखों के रास्ते काम करते हैं। सुनने की शक्ति साम्य कानों के रास्ते काम करती है, सूंघने की शक्ति नासिका के रास्ते करती है, जबान की शक्ति जबान के रास्ते चखने की शक्ति, और स्पर्श जिस्म का चमक। तो पांच ज्ञान इंद्रिय इसको व्याप रहे मन को, कभी अच्छी सुंदरता अच्छे अच्छे नजारे देखकर मन खिंच जाता हो, कभी अच्छे अच्छे राग सुनकर मन बाहर मुखी जाता, अच्छे अच्छे खाने जो खाए हैं रस लिए हैं बार बार मन वहीं जाता, बड़े बड़ी खुशबुएं महकदार स्थानों में फिरा है वो ख्याल आता, कभी स्पर्श की बीमारी खाई। कहते ये कर्म इंद्रिय के जरिए ज्ञान इंद्रिय इस सुर को बाहर खींचे कर रहे हैं मन, मन के साथ। नतीजा क्या होता है, कभी ये काम में गिरता है कभी क्रोध में फैलता है। अब काम किसको कहते हैं, कबीर साहब ने इसकी तारीफ की है, जेती मन की कल्पना काम कहावे सो, जिन्नी कल्पनाएं मन में उठ रही ये सब कामना काम है। जब जिस्म से इसका ताल्लुक होता है तो उसको ब्रह्मचर्य की रक्षा का न करना उसको काम कहते हैं। चेस्टिटी इज लाइफ एंड सेक्सुअलिटी इज डेथ, पाक दामनी तहारत नेक पाक जीवन, ये जिंदगी के देने वाली है। और इसका पाप करना मौत के घाट उतरना, इतिहास बड़े बड़े। पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी ने जब हिन्दुस्तान पर हमला किया है, पहली बार पृथ्वीराज फतह पाकर आए, दोबारा जब मोहम्मद गौरी आया है तो पृथ्वीराज हार गया था। तारीखदान लिखता है कि पहले उस दिन उसकी कमर एक बांदी ने बांधी थी, शायस्ता तरीका है बयान करने का। नेपोलियन बोनापार्ट जिसके नाम से यूरोप सारा थर्राता था, जब वाटरलू के मैदान में गया है तो इसी कुएं में रात को गिर चुका था, ये इतिहास बतला। आप अपना तजुर्बा देखिए रोज का। कबीर साहब कहते हैं कामी कुत्ता 30 दिन मन में रहे उदास, एक बार काम का बेग कुत्ते के अंतर आए 30 दिन उसका असर उस पर रहता है। अरे भाई वो इंसान जो हर वक्त इसमें गिर रहे हैं उनकी क्या गति। तो इनों की कहां से काम असर करता है, आंखों के रस्ते। अगर काम के हमलों से बचना होता किसी की आंखों न देखो, बच जाओगे, बहुत सारे बच जाओगे। आंखों के रस्ते हिसाबदानों ने हिसाब लगाया है, 83% 83% संस्कार सिर्फ आंखों के रस्ते हमारे अंतर में आते हैं, और कानों के रस्ते 14% सुन सुनकर भड़कता है इंसान, 97% सिर्फ 2 इंद्रियों के घाट से संस्कार बाहर से आते हैं, बाकी 3% और 3 इंद्रियों के रस्ते। इसीलिए कहा एक मुसलमान फकीर ने, चश्म बंदो गोश बंदो लब्बे बंद गर्न बीनी सिरे हक बरमन दे, कि आंखों को बंद कर लो कानों को बंद कर लो, अगर जबान को बंद कर लो, अगर तुम पर हकीकत का राज न खुले मुझे हंसी कर लेना। जब ख्याल ज्यादातर आंखों के रास्ते बाहर जाता है, बाहर के साथ या कानों के रास्ते या जबान के रास्ते, जब तीनों बंद हो गए मन बाहर जाना छोड़ दे। गुरु नानक साहब ने फरमाया कहर रहो रे मन मुगध याने, ऐ मुगध इंसान ऐ मन मुगध तू घर में रहना सीख, ये गाथा है, बाहर भटकने को छोड़। तो जो घर में रहना शुरू कर दे उसको असलियत का राज खुलना शुरू हो जाए, बात हो जाए। कभी ये काम में गिरता है। अब देखिए, काम और नाम की दुश्मनी है, डायमेटिकली अपोजिट। नाम पावर, आगे कई बार अर्ज की गई है कि नाम पावर है जो सब खंडों ब्रह्मंडों के बनाने वाली है। नामे ही ते सब जग हुआ, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, वो ताकत जो सब के धारने वाली है। पुष्ट पसे पुष्ट आधार है उसका, नाम नाम से अदा किया गया। सो कहते नाम कहाँ है, अदृष्ट गोचर नाम अपारा, इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर मालूम होता। अब एक करो ऊपर की तरफ और काम करो नीचे की तरफ। अब बताओ, ऐसा इंसान जिसकी गिरावट हरदम है, बताओ वो कैसे नाम, कहते नाम नहीं खुल रहा। अरे भाई, जीवन को नेक पाक बनाओ। मैंने जो डायरी तजवीज कर रखी है उसको कुछ खास मतलब है। जितना जीवन नेक पाक होता चलेगा उतनी अंतर की रसाई होती चली जाएगी। समझे, एक लैंप हो उसमें जग रहा, वो जग रहा, अगर नीचे सुराख करके उसका तेल निकल जाए तो लैंप जगेगा फिर नहीं। तो जीवन की पवित्रता बड़ी भारी दूर थी। मन इंद्रियों के घाट पर बाहर फैल रहा है, बार बार यह काम में गिरता है या क्रोध में फैलता है। क्रोध किसको कहते हैं? क्रोध और काम एक ही चीज है, माफ करना, सिर्फ एक सूरत का बदल जाना। बल्कि सारे जितने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, एक ही चीज के उलटने का नाम है और कुछ नहीं। एक नाला जा रहा है पानी का बड़े जोर से, उसमें खामोश जा रहा, एक बड़ा पत्थर रख लो बीच में, वो टकराएगा उससे, दो चीजें पैदा हो जाएंगी, एक झाग एक आवाज। सो इस झाग और आवाज के पैदा होने का कारण वो रुकावट। जब हमारी किसी कामना में कोई रुकावट जाहिरदारी या दरपर्दा होती मालूम होती है, वो गुस्से में तब्दील हो जाती है, क्रोध बन जाती है। क्रोध और क्या है, जाहिरदारी या दरपर्दा, आपको ख्याल हो जाए कि इसने ये किया, ये रुकावट है, गुस्सा देंगे। तो गुस्सा क्या हुआ, हमारी कामना में रुकावट जो था, उसमें दो चीजें सूरतें अख्तियार करती हैं। एक ऊंचा ऊंचा बोलता था, गुस्से वाला आदमी चुपचाप आहिस्ता नहीं बोल सकता, ये याद रखो। और जब बोलते बोलते इतना उस मुंह में झाग आने लग जाते, ये निशानी। अब इसमें रूह फैलती है, निंदा चुगली धड़ेबंदी दूसरों का सौर का जो बुरा भला कहना, ये इसकी सेना बेहतर कर रूह फैल गई। काम में गिरी क्रोध में फैल गई। जब रुकावट होती है आपको पता क्या होता, मैंने जरूर लेना, इसको कहते हैं लोभ। लोभ वही चीज है, जब वो चीज मिलती है तो गले लग के मेरे से जुदा ना हो, उसको ममता कहते हैं, मोह कहते हैं। तो जब लेकर बैठता खूब मस्त होता है, इसका नाम अहंकार है। और क्या एक्सर्ट करता है, मैंने चीज को बात। अरे भाई, ये पांचों चीजें कहां से शुरू हुई, काम लग से। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने क्या कहा, बी डिजायरलेस, कामना विहीन हो जाओ, कामना विहीन, कामनाओं से रहित हो जाओ, हकीकत की तरफ चले जाओ। एक एक बात में बड़ी राज की बात है, हम पढ़ छोड़ते हैं, कभी बिचारा नहीं बात क्या। तो गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं कि हमारा मन तो दस द्वारों में भटक रहा है, ऐसा मन उस प्रभु के गुण कैसे गा सकता, ऐसा मन उस प्रभु के गुण कैसे गा सकता। कहते इस मन को क्या बीमारी है, कहते इंद्रिय इसको व्याप रही, खेच रही भोगो रूपी खेतों। समझा, सो इंद्रिय है जो मन को भोगो रूपी खेतों में खेचे फेरते हैं। तो इनके हटाने का इलाज इंद्रियों पर दमन, इसलिए कहा अपने इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार हो। तो हमें बीमारी का पता लग गया, काम और क्रोध में सारी दुनिया बह रही। एक जगह गुरबानी में यहां तक कहा है, काम क्रोध पर से जे नाहंते मूर्त भगवाना। जिस इंसान के जिसमें काम क्रोध के बेग नहीं चले, लहरें नहीं चली, कहते वो भगवान की मूर्त है, उसके दर्शन करने से वासनाओं का नाश होगा। ऐसे पुरुष के असर पड़ेगा, कुदरती बात है। जिस मन खड़ा है, जिस जिठिया मन रहती है सदगुरु तिसका नाम, जिसके देखने से मन खड़ा होने लगे उसका नाम सदगुरु। ये नाम लिया, नफ्स हरगिज ना कुछ है जुजिले पीर, ये नफ्स कभी नहीं मरता जब तक इस पर किसी पीर का साया ना पड़े। ये मुसलमान फकीर कह रहे हैं। तो मन के खड़े करने का उपाय क्या हुआ? किसी समर्थ पुरुष की सोबत, पहले बाहरी और अंतरी, फिर वो आगे सामान देगा, आगे लेकर आएगा। तो पहला कदम ये बना, यही तुलसी साहब ने फरमाया, सुरत साध संग ठहराई तो मन फिरता कुछ पाए। सुरत साधु के संग में ठहरना शुरू होती है तब मन कुछ खड़ा होने लगता। किसी महापुरुष की सोबत सत्संग उसको कहा जाता है, वो एक ब्रेक वाटर है। समुद्र में बड़ी लंबी दीवार बनाई जाती है एक पत्थरों की, ताकि समुद्र की लहरें उससे टकरा कर दूसरी तरफ वापस हो जाएं, और उस दीवार की दूसरी तरफ इंसान आराम से नहा सकता है, अपनी शक्ल भी देख सकता है पानी। तो किसी महापुरुष की सोबत एक ब्रेक वाटर का काम करती है, उस वक्त थोड़ी देर के लिए फैलाव कम हो जाता, थोड़ी होश आने लगती है, एट होम होने लगती है। बात क्या, जब वहां उस मंडल से निकल जाओ फिर वही बात है। तो कहते हैं दुनिया सारी गुरु अमरदास बड़ा खोल कर समझा रहे हैं कि मन को इंद्रिय व्याप रहे, जिसको इंद्रिय व्याप रही है ऐसे पुरुष को प्रभु का नाम क्या कहेगा, ऐसे पुरुषों की क्या गति है, गति कभी काम में गिरती है रूम की, कभी रूह फैलती है क्रोध में, ऐसे पुरुष प्रभु को क्या गाएगा। यही तुलसी साहब ने फरमाया, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहां उसके बिठाने के लिए। एक दिन लाखों ख्वाहिशात से इसके दिल के टुकड़े हुए पड़े, और फिर दिनों दिन बढ़ती हुई हवस इसको और फैलाव में ले जा रही। कहते फिर ठिकाना है कहां उसके बिठाने के, फिर प्रभु की बात कैसे बनेगी भाई। अब ये कुछ बयान किया, आगे इसका इलाज बतलाएंगे। अब मन काबू कैसे हो, सवाल पर इसके हमने बड़े उपाय किए, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया, कईयों ने तो बाहर मुखी पूजाएं नमाजें जो अपरा विद्या के साधन है वो करने शुरू किए, उसमें भी एक नुक्स रह जाता, साधन भी होता रहता मन फिर भी दौड़ता। ये करने वाले इस बात के शाहिद होंगे, कुछ न कुछ करते हैं फिर भी मन दौड़ता, एक वक्त दो दो काम होते हैं। तो ऐसी हालत में अब मन खड़ा हो तब काम बने ना। ये साधन मगर उनकी जो तालीम है ना, उसमें हर एक बात का जिक्र आता, अनेकों साधन किए मगर मन काबू नहीं आया। जब तक मन काबू ना हो काम नहीं बनता। तो इसके बाद आप फरमाएंगे कि मन कैसे काबू हो सकता, सवाल ये। आगे फरमाते हैं, पढ़ना है तो वाह वाह
सहज गुण रवि जय बाहो बाहो सहज गुण रवि जय।
कहते इसका इलाज है, एक गुण है जो रव रहा, बड़ा आश्चर्य गुण है, समझे, एक परम तत्व है जो सब में रब रहा, वो इसका इलाज है। अगर उसके साथ हमारा ताल्लुक आ जाए तो मन खराब हो जाएगा, मन इंद्रियों के रस और भोगों को छोड़ देगा। उस परम तत्व, वो गुण जो जरे जरे में रब रहा है, उसके साथ लगने हैं सहज ही में। अगर लग जाओगे तो मन खड़ा हो जाएगा। अब इतना कुछ बयान किया, अब इसको और खोल कर आगे बयान करेंगे कि ये परम तत्व या गुण क्या चीज है। जी,
राम नाम इस जग में दुर्लभ है, गुरमत हरि रस पीजे।
कहते हैं वो राम रमथी तेरामा, जो रम रहा है, कैसा नाम जो रम रहा है। राम नाम क्वालिफाई करता है नाम को। कहते हैं वो इस जगत में दुर्लभ है, वो परम तत्व या वो गुण जो रव रहा है, अगर उसके साथ हम रव जाएं तो मन खड़ा होगा। कहते वो गुण रव का क्या नाम है, कहते वो रमा हुआ नाम है, उसका पाना इस जगत में दुर्लभ चीज है। राम नाम इस जग में दुर्लभ है, गुरमत हर रस पीजा, कि वो उसका रस हम कैसे पी सकते हैं। कहते गुरमत द्वारा, गुरु की मत, गुरमत गुरु की मत। तो गुरु मत अगर मिल जाए, उसका रस आने लग जाए, जो रम रहा नाम है उसको पाकर मन खड़ा हो जाता। पहले गुरु, फिर उसकी मत, पहले अनुभवी पुरुष, जैसे इस मन को काबू किया, उसकी सोबत, फिर वो अंतर में उस रम नाम के साथ जोड़ दे, यही इलाज इस मन के काबू करने का। वो प्रणव की ध्वनि जो घट घट में हो रही है, जिसको श्रुति वेदों ने कहा है, उपनिषदों ने उसको उद्गीत करके बयान किया, उदर करा ऋग्वेद में उसको वाक्सिद्धि करके बयान किया है, मुसलमान फकीरों ने उसे कलमा करके कहा, कलमे से 14 तबक बने, इधर नाद से 14 भवन बने, बात वही, नाम से खंड ब्रह्मंड बने, शब्द से धरती और आकाश बना। तो एक ही चीज के ये लफ्ज बोध कराने वाले हैं, वो गटगट में रव रहे हैं। उसको ईसाइयों भाइयों ने वर्ड करके बयान किया, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड। जब शब्द था, शुरू में था, खुदा के साथ था, शब्द खुद खुदा था, जब वो था कुछ नहीं बना था, ये भी करें। तो सब महात्मा ये बयान करते हैं कि हर एक इंसान के अंदर एक पावर डिवाइन लिंग घटघट में मौजूद है, उसमें उसके पाने से ये मन खड़ा हो जाता। आप देखिए भगवान कृष्ण जी के जीवन में एक वाक्य आता है कि दरियाए जमुना में उन्होंने छलांग लगाई, नीचे हजार मुंह वाला सांप था, उस पर उन्होंने बांसुरी बजाते हुए ध्वनि के आश्रय मन को नथ लिया, नाग को जिसके हजार मुंह थे। अब बताएं ये अलंकार के तौर पर बयान किया, वो कौन सा नाग है हजार मुंह वाला, वो गटगट में यही मन बैठा। इसके हजारों तरीके हैं इंसान को काबू करने के, ज्ञानियों को ज्ञान में, ध्यानियों को ध्यान में, बाह पूजा वालों को तीर्थवासियों को तीर्थवासी के जोम में, हर एक को अहंकार में फंसा रखा। कैसे काबू किया, वो प्रणव की ध्वनि जो अंतर हो रही है उसके सुनाने से, अलंकार के तरीके से बयान किया। तो नाम की ध्वनि जो गटगट में हो रही है, प्रणव की ध्वनि, उसके सुनने से मन हमेशा के लिए काबू हो जाता। मन मूसा पिंगल विहा पी पारा हरिनाम, चूहे को अगर पारा पिला दो वो भारी हो जाता है, दौड़ने दुपड़ने से हट जाता। ऐसे ही मन को अगर नाम का पारा पिला दिया जाए, ये दौड़ने भागने से हट जाएगा। मन को काबू करने का इलाज, तृप्त करने का इलाज, नाम मिलिए मन तृप्ति, नाम या गुरु, दो ये इलाज है इसके। न ये पढ़ने से काबू आता, हजार बार पढ़ो फिर मन वक्त पर धोखा दे जाता, विचार से भी ये काबू नहीं आता, थोड़ी देर के लिए आता फिर भाग जाता। जैसे आग हो फागे के नीचे दब जाए मालूम होता है आग नहीं है, जब अंधेरी चलती है तो वो आग पर जलत हो जाती है। अगर आग पर पानी डाल दिया जाए फिर हजार अंधेरियां चले तो भी पर जलत नहीं होगी। हाँ, सो मन के काबू करने का एक ही उपाय है, ये रस का आशिक है, इसको लज्जत चाहिए। बाहर दुनिया में लज्जत दो चीजों पर तकसीम होती है, एक नजारे रूप, अच्छे अच्छे नजारे खींच जाता है इंसान देख, दूसरी सुरीली धुने, अच्छी अभी सुरीली आवाज आने लगी सबको मन खींच जाए राग गाना। अब जिस बच्चे के हाथ में एक खिलौना है उसकी लज्जत ले रहा है, अगर उसको लेना चाहते हो वो चीज उससे ज्यादा अच्छी चीज उसको दो तब वो छोड़ेगा ना। आपने मन को अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, समझा, मन को अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया बच्चे को, वो क्या करेगा, दरवाजे तोड़ेगा, चीखेगा, पुकारेगा, हाय हाय करेगा कि नहीं। अगर बच्चे को अंतरी खेलने का सामान मिल जाए तो उस वक्त वो क्या करेगा, चुप कर रहेगा। तो इसी तरह अगर हमारे मन को बाहर जो लज्जत हमको आ रही है रूप और आवाज में, अंतर में कोई लज्जत इससे ज्यादा बढ़ जाए तो ये खड़ा हो जाए। बच्चे को अंधेरी कोठरी में कोई सामान खेलने को मिल जाए चुप कर रहेगा कि नहीं। तो अंतर नाम में ये दोनों चीजें, समझे, नाम में नूर भी है नजारे भी हैं, अंतर खंड ब्रह्मंड भी जारी है देखने में आने लग जाता है, और उसमें महारस है, उस रस को पाकर बाहर के रस फीके पड़ जाते हैं। उसमें आवाज भी है सुरीली धुने भी हैं और रूप भी है। जब वो रस आवा है रस नहीं बाबा, जब अंतर में वो जो एक चीज जारी हो गई उस रस को पाकर बाहर के रस फीके पड़ जाते। अब हमें क्या करना चाहिए, गुरु मत से इस रस को पी सकते हैं, गुरु को पकड़ो। कबीर साहब ने कहा कि इसका क्या इलाज है, कहते किसी गुरु के पास जाओ और उससे पूछो इस तन में मन कहाँ बसा है, निकस जाए कई ठोर। उसे पूछो भाई तन में मन का बासा कहाँ है और किन रस्तों से ये बाहर भाग भाग कर जाता है। कहते अगर गुरु गम होए तो परख ले ना तर कर गुरु। अगर कोई अच्छा समर्थ गुरु मिलेगा तुमको बताएगा मन का ठिकाना कहाँ और कैसे ये बाहर जाता है। कहते अगर ऐसा गुरु बाहोश नहीं मिलता जिसको इसका भी पता नहीं कि उसको छोड़कर किसी और गुरु के पास चलेगा। दिल दरिया समर्थ बिना कौन लगा है पार, जिसे खुद ही अबूर नहीं किया वो कैसे आपको मदद कर सकते। तो ऐसे महापुरुष के पास जब हम जाते हैं पहले उसकी सोबत और संगत हमको मिलती है, उससे मन खड़ा होने लगता। समझे, यही मौलाना रूम साहब ने फरमाया, दिला नजदे कसे बिनशी के ओ आज दिल खबरदार, ऐ दिल तू किसी ऐसे की नजदीकी अख्तियार कर जिसको इस दिल का खबर हो, हमारे दिल को पता हो कि कैसे हम इसमें बह रहे हैं, ये दिल किस तरफ हमको ले जाता है, कैसे हम बाहर दुनिया में खिंच जाते हैं। बजेरे यहां दरख्ते रो बरो गुलहाए तरदारद, किसी ऐसे सरसब्ज दरख्त के नीचे बैठो जिसके ऊपर तरोताजा फूल और फल हो। अगर धूप से झुलसा हुआ इंसान किसी ठंडे सायेदार दरख्त के नीचे आए होश आ जाती है कि नहीं। क्या मतलब, किसी महापुरुष की ऐसी की सोबत अख्तियार करो जिसका दिल काबू हो, उसके पास बैठने तुमको कुछ राहत आने लगे। फिर आगे ताकीद कहते हैं, दरी बाजारे उतारा मरो हर सूच बेकारा, इस दुनिया के बाजार में तू हर तरफ बेकारों की तरह वक्त न जाया करो। तो क्या कहते हैं, क्या कर, बदुकाने कसे बिनशी के दरों में भी जाना, किसी ऐसी की दुकान पर बैठ जिसके अंतर शायद हो। फिर आगे एक ताकीदी लफ्ज बतते हैं, बाहर दे गए कि मैं जोशद में आवर कासो बिनशी, किसी देख बोले तो बड़े उबल रहे हैं, क्या मतलब बड़ा प्रचार हो रहा, बड़े गुरु बैठे, बट्टा उठाओ तो गुरु मिलता ना, तर कर गुर और जाओ भाई, मन कहाँ बसता है, किस तरफ से निकलता है हमें बताओ, और ठिकाना करके बतलाओ, तब तो ठीक, नहीं तो जाओ किसी और के पास, वक्त क्यों जाया करते। तो कहते किसी ऐसी दुकान पर बैठो जिसमें शायद हो, कहते देख बड़े तो बड़े उबल रहे हैं, बड़ा प्रचार हो रहा है, कोई नहीं कहता कसन को दो गए मन तुरशस्त, कोई ये नहीं कहता कि मेरी छाछ खट्टी है, हर यही कहता है कि बस यही जगह है और कहीं नहीं, हर दे गए कि मैं दोषित धरो चीजें दिगरदार, कहते हो सकता है देख बड़े दूध के ना उबल रहे, वहां तेजाब भी उबल रहा हो, जाओ सत्संग करो, देखो क्या है क्या नहीं, जब होश आने दो रोटी खाते हो आ तुम भाई, पर खो देखो गैरदारी कमर के भीतर तो महसूस होने लगता भाई, थोड़ा मन को टिकाव मिला, थोड़ी शांति मिली, कुछ क्लैरिफिकेशन मिली किसी मजमून की, अगर ऐसा हो फिर थोड़ा यकीन बनने लगता है ना। तो कहते हैं मन के काबू करने का इलाज केवल यही है कि किसी अनुभवी गुरु मत को हासिल करो और अंतर नाम के साथ जो रम रहा है उसके साथ लग जाओ, उसकी धुनी सुनने, जिसकी रमे नाम के साथ लिव लग गई वो असल गुरमत को पा गया, गुरमत के पाने से हर रस मिल गई, हरिदास के पाने से मन खड़ा हो। तो मन के खड़े होने का उपाय केवल गुरुमत का हासिल करना है और नाम के साथ लगना, वो महात्मा आपको बिठाकर नाम का कांटेक्ट देगा, इन्हों के घाट के ऊपर कैसे आ सकते हो इसका तजुर्बा देगा, जब वो रोज करने अपने आप जीवन पलटा खा जाएगा, मन इन्हों के घाट के रसो भोगों को छोड़ देगा। ये गुरु अमरदास जी साहब को 70 साल की तलाश के बाद जब गुरु अंगद साहब के चनवान भाई पूछते उनके पहुंचने का समय मिला, उस वक्त की रसाई की बात है जो उन्होंने पाई और दुनिया को खोल खोल कर समझा रहे थे।
राम नाम इस जग में दुर्लभ है, गुरमत हरि रस पीजे, शब्द चीन मन निर्मल होवे, ता हरि के गुण गावे।
पहले राम नाम कहा, अब उसी को शब्द करके बयान कर रहे हैं, शब्द की तारीफ वही बयान की है जो नाम की बयान की है, उत्पत परला शब्द हुआ शब्द ही प्रोपत हुआ, जिस ताकत के आधार पर उत्पत्ति और परलय हो रही है और दोबारा सृष्टि का आगाज जिस ताकत के आधार पर हो रहा है उसका नाम शब्द है। कहते शब्द के चीनने से उसके साथ सुर्त इनों का घाट छोड़कर उसके साथ लगने से मन निर्मल हो जाएगा, निर्मल तो होगा, बाहर के संस्कार इनों के रास्ते से आकर इसमें पड़ते हैं, इनों का घाट छूटेगा तब शब्द और नाम का तलक मिलेगा, इनों के घाट पर नहीं तो बाहर की आलाइशें इसमें बैठनी शुरू, वो नहीं बैठेंगे, और अंतर की जो जन्म जन्मों के संस्कार इसमें दबे पड़े हैं वो नाम की ध्वनि के रस पाने से इस ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाएंगे, मन साफ हो जाएंगे। मन की सफाई में निशानी क्या है, उसमें कोई हिलावट नहीं उठ रही, स्थिरता, समझे, एक ही एक मालिक के ख्याल से सब दुनिया के ख्याल नफी हो जाते हैं, ऐसे स्थिर मन में नाम का विकास होता, मन साफ हो जाएगा, तब ऐसी हालत में हरि के ये सच्चे मानो में गुनगाने के काबिल हो जाता, दिल साबित हो गया ना, दिल खड़ा हो गया, मन खड़ा हो गया। यही मौला आपने भाई नंदलाल साहब ने कहा कि मुर्शिद कामिल इलाज है दिल को न, कामिल मुर्शिद इस दिल का इलाज करता, दिल कहो मन कहो, पहले बयान किया इसको क्या बीमारी, कहते हैं क्या इलाज करता है इसको साबित करता, किस तरह से, ई मुरादे दिल बदिल हासिल शिवत, इस हमारे दिल की मुराद को यकसू करने के अपनी दिल की दिली तवज्जो से करता, यज्ञ गाय जाम फदाश बस बदर कारमा, उसकी एक जान उभारने वाली नजर हमारे लिए कहो, बड़ा काम कर जाते। तो नाम कैसा दिल के साबित करने के लिए आमिल पुरुष की सोबत और संगत, वही जो पहले कहा गया, नफ्स हरगिज न कुछ जुज लेती, सोत साध संग ठहराई तो मन फिरता किस पाई। ये पहला करते हैं। वो क्या करते हैं कि तुम्हारे अंदर नाम की धुनी है उसके साथ लग जाओ, ये इलाज। कैसे मन साफ हो जाएगा, तब तुम हरि के गुण सच्चे मानो में गाने के काबिल होते। एक बार ख्याल किया अंत पहुंची सम, तब जब मन की आलाशें साफ हो जाए, बाहर सोबत संगत सत्संग कहो, जागते पुरुष की सोबत कहो, पहला कदम। दूसरा अंत नाम का सत्संग, फर्स्ट क्लास सत्संग कहो। इन दोनों के करने से मन खड़ा होने लगेगा, मन साफ होगा, हरि के गुण गाने के माने निकलेंगे, उसका फल होगा। मन कहीं और तन कहीं, ऐसी हालत में सोबत नहीं भाई। कबीर साहब ने कहा, मन दिया कहीं और ही तन साधु के संग, कहे कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। मन तो कहीं और दिया है, तन साधु के संग में बैठा है, बताओ ऐसे मन पर रंग कैसे चढ़ेगा। कोरी गजी पर कभी रंग चढ़ता, यक्षुई दिल से बैठो, सत्संग करो बनाए। ये स्वामी जी महाराज फरमाते, जाओ बैठो, तुम रहो या वो रहे महात्मा, बस और कोई भी नहीं। पूरी तवज्जो से सुनो, ध्यान दे के सुनो, सब तरफ से हाथ हटाकर बैठो, दुनिया से हाथ धोकर बैठो, फिर मंडल का असर भी पड़ेगा, एक चीज की समझ भी आएगी, उभार भी पैदा होगा। ऐसा सत्संग किया हुआ एक हजारों जिसमें मन बाहर भाग रहा है, उन सत्संगों से बेहतर। हम जब सत्संग करते हैं, माफ करना, अब तो वक्त पर नहीं आते, आए पीछे मजमून शुरू है, वो आधा समझा आधा ना समझा, जाते हुए इस तरह चले गए जैसे शमशान भूमि में मुर्दा छोड़कर लोग भागते। ये भी याद नहीं रहता हमने आज सुना क्या है, मजमून क्या है। नहीं, यक्षी कल्प से करो सत्संग, करो बनाए, तब पूरा फायदा होता। तो गुरु अमरदास जी साहब ने जो तजुर्बा अपनी जिंदगी में मन के काबू करने का किया, बड़ा खोलकर बड़े प्यार से समझा रहे हैं। मन के साफ हो जाने पर फिर तुम्हारी के गुण सच्चे मन में गा सकोगे।
गुरुमति आप पछाण, ताने जे घर वासा पावे।
कहते जब तुमको गुरु की मत मिल जाएगी, तुम अपने आप को जानने लग जाओगे। गुरुमति आपे आप पछाणा है, ता निज घर वासा पाए। तुम असल घर हो, जो निज वतन है तुम्हारा, सतलोक सचखंड आत्मा का, तेरा धाम अधर में प्यारी, तू धर संग रात बनाने। ऐ आत्मा तेरा असली वतन वहां, जहां पर ये मैटर धर नहीं है, तू इस धर में फंसी पड़ी है। और शेष नशे में तो शर्मत बाधा, कानी मुकी में खते खाक चवी। अरे तेरे रहने की जगह वो अर्श है, कहाँ के रहने वाले कहाँ मिट्टी और पानी में फंस रहे। सब महात्मा की बात कर रहे हैं। तुम निज घर में बासा पा जाओगे, उसके पाने से पहले अपने आप को जान जाओगे। कैसे? गुरु मत द्वारा। सब उपनिषद यही कह रहे हैं, अपने आप को जानो। गुरु नानक साहब ने भी यही फरमाया, कहो नानक बिना पाची ने मिटे न भ्रम की काई। जब तक अपने आप को तुम कीमते नहीं, अनुभव नहीं करते, आत्मा को साक्षात्कार नहीं करते, तब तक ये भ्रम मिटता नहीं है बाहरी जो दुनिया का। यही क्राइस्ट ने कहा, नो दाई सेल्फ। सब महात्मा की बात कर रहे हैं। तो अपने आप के जानने का जो राज है, सेल्फ एनालिसिस, आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके आत्मानुभव करना है। चले पहले तुम इस चीज को पाओगे, फिर निज घर में बासा होगा। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते प्रभु को कैसे जान सकते। इसलिए सब महात्माओं ने पहला सवाल जो हमारे सामने रखा है वो अपने आप के जानने का, नो थाइसेल्फ, अपने आप को जानने। तो खुद शिनासी खुदा शिनासी, जब तक तुम अपने आप को नहीं जानते प्रभु के जानने के काबिल नहीं। ये पहला कदम है। कहते अपने आप को जानना कहां से होगा, कहते गुरु मत से। किसी अनुभवी पुरुष जिसने अपने आप को जाना वो क्या कहता है, स्तन की मटकी को फोड़ो, छोड़ो और चलो। आत्मा पर कई मटकियां हैं, स्थूल जिस्म की, सूक्ष्म जिस्म की, कारण जिस्म की, महाकारण जिस्म की। कारण जैसे जैसे पिंड से रूप स्थूल से ऊपर आएगी थोड़ी होश आने लगेगी, सूक्ष्म से ऊपर आओगे और ज्यादा होश, कारण से आओगे अपने आप को जानने लग जाओगे, हकीकत के नजदीक हो जाओगे, उसके जानने के काबिल हो जाओगे। तो अपने आप के जानने का जो मजमून है ना, उसका हल कैसे हो सकता है, कहते गुरुमति आपके आप पहचाना, कान निज करवासा पाए, तब तुम तो उस मालिक की दरगाह में दाखिल हो जाओगे जो तुम्हारा असली वतन है, सत्संग सतलोक, जहां न परले पहुंची है न महापरले पहुंची। ये गुरु अमरदास जी साहब को इस बात का अनुभव जब हुआ खोल खोल कर समझा रहे थे।
रे मन मेरे सदा रंग राते, सदा हरि के गुण गाओ।
अब कहते हैं ऐ मन, अब तुम इस नशे को पा चुके हो, नाम के नशे को, नाम खुमारी नाम का, चढ़ी रहे दिन रात, अब इस रंग में मस्त हो जाओ और हरि के गुण गाते चले जाओ। दुनिया के इनों के भोगों के भी नशे तुम ले लिए, वो भी देखे, अरे भाई अब ये भी देख, वो तो देख लिए, अब तुमको नाम का नशा मिल गया, इसको देख क्या क्या चाहिए, वो कहां और ये कहां, कहां शराबे जानना, कहां शराबे खाकी, कहां ये दुनिया के नशे हैं, कहां ये आत्मरस के नशे। वो निजानंद उस करके बयान किया, सब महात्माओं ने उसकी बड़ी महिमा गाई। गुरु नानक साहब जब बाबर बादशाह के पास गए हैं तो यही कहा, उन्होंने भांग का प्याला पेश किया तो फरमाने लगे, अरे भाई बाबर, ये जो नशा तू पीता है सुबह को पीता है, शाम को उतर जाता है, शाम को पीता है सुबह उतर जाता है, मेरे पास वो नशा है नाम का जो कभी उतरने में नहीं आता है, नाम खुमारी नाम का, चढ़ी रहे दूंगा। इस खुमार का ये जिक्र चमत सबरेश साहब ने भी किया, वो कहते हैं मेरे में वो निजानंद है, आनंद की लहरें हैं, अगर मैं जिस्म को छोड़ जाऊं, मेरी जिस्म की खाद बनाकर जमीन में डाल दी जाए, उस जमीन में से कनक उगे, उस कनक की रोटी जिस तनूर में पके, वो तनूर में से आनंद के शोले निकलेंगे। फिर आखिर क्या कहते हैं कि रोटी के पकाने वाला और रोटी के परोसने वाला मस्त हो जाए, आखिर कुछ चीज है वही। महात्माओं ने उस रस को बयान करने के लिए हमें दुनिया के रसों का मुकाबला करके यत्न किया है समझाने का, मगर वो कहां रस और ये दुनिया के रस कैसे, वो असल शराब नशा कहां और ये दुनिया के भोगों के रस कैसे। नहीं तो कहा मिसालें देकर, जैसे कामी काम लोग आवाया, त्यों हरजन हरजस भावाया, अब काम की चीज का रस क्या, कहां निजानन आत्म कर आत्मरस और कहां ये, मगर इसका हमको तजुर्बा है ना, इसलिए ये मिसाल देकर समझाने का यत्न कर रहे हैं। ये तो वेरी बैड कैरिकेचर। तो कहते हैं कि आया मन, तुझको अब ये नाम का नशा जो मिला है इसको ले खूब भोग, वो तूने देख लिया, इसका भी देख कर दे क्या कुछ होता है इसमें, देख।
मन मेरे सदा रंग राते, सदा हरि के गुण गाओ। निर्मल सदा सुख दाता, मन चिंदिया फल पाओ।
कहते वो हरि निर्मल है, सुखों का समुद्र है, सुखदाता, उसके साथ लगने से क्या हशर होगा तुम्हारा। अब तो मन अनेकों ख्वाहिशात करता को पूर्ण होती नहीं नजर आती ना। कहते फिर उस रस के बाद जब तुम दुनिया में काम करोगे, कोई फुरना होगा फौरन पूर्ण हो जाए। मन इच्छा फल पा। अब तो अनेकों ख्यालात उठते हैं, कोई मन पूर्ण नहीं होती ना गति। कहते फिर उस गति उस रस को पाकर, जब भी कहीं मन के साथ जब दुनिया में इंसान आता है उस रस को पाकर, तो मन साथ हो जाता, मन साथ होता। अगर उसमें भी फिर कोई फुरना अगर उठे से ही फौरन पूरा होता। नेचर बैक इन कॉल पर रहती है, इशारे पर चलती है। ख्याल आया नहीं पूर्ण पहले हो गया। पतंजलि जी ने जिक्र किया है कि योगी को एक इतनी शक्ति हो जाती है कि अपनी इच्छा के अनुसार एक नया ब्रह्मांड खड़ा कर सकते। आखिर दुनिया है भी क्या, एको बहु क्षमा कुन फीयो कुन हो पसंद। ख्याल ही था ना, फुरना था। तो कहते तुम उसके साथ कॉन्शियस को वर्कर बन जाओगे, जो तुम्हारा फुरना होगा फौरन पूर्ण होगा। कहां वो नशा, कहां ये, हम कहां बैठे हैं, हमें उस दुनिया का भी कुछ पता नहीं। माफ करना, उसमें एक महारस है, निजानंद है, आनंद की लहरें हैं। मौलाना रूम साहब कहते हैं ऐश इल्ला ऐश ना, क्या ऐश ही ऐश की बाहर है। सब महात्मा ने एक ही बात कही, कहते हैं भाई ये भी रस लिए हैं, अरे ये भी लेकर देख कैसी गति बनती है। देख
हम नीच से उत्तम भये, हर की शरणाई।
अब सवाल ये आता है कि भाई देखो हम भी आप जैसे थे। ये क्यों बयान कर रहे हैं कि हम भी कभी इंद्रों के घाट पर थे, अब उत्तम पदवी को पा रहे, इकरार कर रहे हैं। चेंज का तब्दीली आती है, तब्दीली वो है डाकू भी कहे मैं हाँ अब डाकू नहीं रहा, मैं महात्मा महसूस होने लगता, पितृतंत्र में आने लगती है, इंसान इकरार करने लगता। फरमाते हैं कि हम भी कभी हम नीचे हूं तो मैं कभी भाई इंद्रियों के घाट पर थे, अब हम उत्तम पदवी को पा गए। कहते कब से, जब से हरि की शरण ले ली, अब हरि की शरण, हरि तो अति सूक्ष्म अगम है, बाहरी पोल जिस पर वो काम करता है वो उसको व्यवहार का रूप कहते हैं। गुरु परमेश्वर एक पोलराइज गार्ड और गार्ड, गार्ड कहो और पोलराइज गार्ड कहो, पावर हाउस कहो या स्विच कहो, उसी का इजहार है ना। डूबदा पाथर काट लिया साची बढ़िया, कि हम डूब रहे थे इंद्रियों के घाट पर, मन की लहरों में पकड़कर खेंच कर ऊपर निकाल, ये उनकी बरकत थी, दया थी। देखिए एक चीज नीचे पड़ी, एक आदमी गिरा है, मेरा हाथ नीचे जाता उसको पकड़कर उठाता, अब मेरा हाथ मैं ही हूं इस हाथ में काम करने वाला। अब हाथ ने उठाया दूसरे को, उसको तो हाथ नजर आया, पीछे जो काम कर रहा था वो नहीं नजर आया, पर वो हरि काम करता। कहते उसके दर पर जब हम पहुंचे उसकी शरण में, हम डूब रहे थे मन इंदु के घाट पर, बह रहे थे बे अख्तियार इंदु के भगोरसों में, उन्होंने खेंच कर हमको ऊपर लिया, इंदु के घाट से ऊपर लिया। ये उनकी खास बख्शिश थी, दया थी। दुबदा पाथर काट दिया साची बढ़ियाई, इसी में उनकी बड़ी भारी बढ़ियाई ग्रेटनेस है। किसी महात्मा की बढ़ाई किस बात में है कि जो इंदु के भोगों में रस रहे बह रहे वो से निकलकर बाहर किनारे खड़े होंगे, बाहरी शोभत के असर से और जो वो युक्ति देते हैं उसकी कमाई के असर से डाकू से महात्मा बन सकता। वाल्मीकि डाकू थे, महर्षि वाल्मीकि बन गए। रामायण कहते हैं 10,000 साल पहले लिखकर रख दी। अरे भाई अगर वो हो सकते तो हम क्यों नहीं हो सकते। सम्राट पुरुष का हाथ सिर पर होना चाहिए। जिस इलाज से वो महर्षि बने उसी इलाज से हम भी बन सकते हैं। तो ये जो कुछ बयान कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं गुरु अमरदास? कई भाइयों का ये ख्याल है कि ऐसे महात्मा आसमानों से गिरते हैं। अरे भाई वो बनते हैं, बनते चले आए हैं, कई जन्म लेते हैं बनने को, समझे, कर करके बनते थे, इन दी मेक रहते हैं। कोई बीए पढ़कर आ गया वो एमए से शुरू होगा कि नहीं? किसी जन्मों में वो बना चला आ रहा, जब एमए बन गया कमीशन हो गई, जाओ भाई काम करो, को बना हुआ आ जाता है, उसमें फर्क क्या पड़ता है बन गया या बना हुआ है? समर्था तो एक जैसी है ना, सवाल तो है, जैसी जैसी जरूरत वैसा वैसा वो इजहार कर लेते हैं, वैसे वैसे बत लेते हैं, जैसा जैसा जमाना वैसे वैसे आला। तो कहते हैं हम कभी आए भाइयों आपकी तरह थे, इंद्रियों के घाट पर थे, मगर आप उत्तम पदवी को पा गए हैं। कहते कब से, जब से हमने हरि की शरण ली है, उन्होंने क्या किया, हम डूब रहे थे मन इंद्रियों के लहरों में बह रहे थे, उन्होंने हाथ से पकड़कर बाहर निकाल लिया, यही उनकी ग्रेटनेस। ये गुरु अंगद साहब की तरफ इशारा दे रहे हैं कि जब से उनकी शरण आए हैं हमारी ये गति बन गए। देख
हम नीचते उत्तम भये, हर की शरणाई, पाथर डूबदा काट लिया साची वडियाई, बिख से अमृत भये, गुरमत बुद्ध पाई।
कहते कभी हम इन्हीं के जहर में आलूद थे, लिथड़े पड़े थे, रंगे पड़े थे, अब अमृत अमर जीवन को पाया। कहते जब से गुरमत बुद्ध पाई, गुरु की मत की बुद्धि हमको हासिल हुई उस दिन से। पहले हम इंद्रियों की जहर में आलूदा थे, जब से गुरु की बात मिली हमारी अवेकनिंग जागृत हुई, हमारी सुमति जाग उठी, उस पर अमल करने से हम पहले इंद्रियों के घाट की जहर हमको चढ़ती थी, अब नहीं चढ़ रहे। यही फर्क है किसी महात्मा और आम लोगों में। आम लोग जब देखते हैं बाहर तो बाहर का असर लेते हैं आंखों में, जो स्ट्रांग पुरुष है महात्मा पूर्ण पुरुष वो असर देता है लेता नहीं, ये फर्क। उसको बिल्कुल जहर में खड़ा कर दो वो असर नहीं लेगा, देगा। गनका के मुतल जिक्र आता है कि वो महात्मा पीछे बन गए। कैसे बने? इतिहास बतलाता है एक महात्मा बारिश हो रही थी, उस बरांडे में जा खड़े जहां बेसव बैठी थी, उसके असर से असल लिया नहीं। आम लोग तो असल लेते हैं ना, महात्मा असल नहीं लेते, देते। यही बड़ाई, वो जहर में आलूद नहीं, वो ऊंचे हैं, दूसरों की आलूदगी को दूर करने में मददगार, उनके दर्शनों से विषय वासना दूर भाग जाती है। किसी महात्मा के दर्शन जो बुरा ख्याल लेकर जाओ, वहां जाकर ख्याल थोड़ा साफ हो जाता है। यही बड़ाई है। तो फरमा रहे हैं कि हम कभी जहर में आलूद थे, अब अमर जीवन को पा चुके। क्या कब से? जब से गुरमत की बुद्धि हमको मिली, गुरु अंगद साहब के चरणों में आए, हकीकत की समझ आई, मन खड़ा हुआ, इंद्रों का घाट छूटा, नाम का रस अंतर में मिला, उस दिन से हमारी ये गति हो गई। ये कैसे गति बनी? कहते गुरु कृपा से। शुक्राना कर रहे हैं जिसका जीवन बदला है, बना है। इतिहास में देखो किसी न किसी महात्मा की शोभा से फायदा उठाया, खाए उसका नाम किसी को याद है या नहीं, इतिहास बतलाता है या नहीं, इस बात को किनारे देना, ये कानून है। थोड़ा खसमे का हुक्म पे आप बिन सतगुर चेत्या न जा, ये फंडामेंटल असूल है, बगैर सतगुर के कहते मैं नहीं मिलता हूं, हरि का चेतावनी नहीं हो सकती। भाई इंद्रियों के घाट पर बैठा हुआ इंसान जिस्म का रूप बना है, जगत का रूप बना, वो कैसे इससे ऊपर आ सकता है? सवाल तो कहते ये फंडामेंटल असूल। जी।
अको परमल भये अंतर वासना वसाई।
फरमाते हैं कि पहले इनों के घाट पर जब हम थे क्या हालत थी, कि हमारे अंतर बदबूएं थी, आग की तरह बदबूदार थे। अब चंदन की तरह खुशबूदार हो गए, परमल वह। सबब क्या? हर एक ख्याल का रंग भी है और बू भी है काम का। और तो वेग आए जिसमें सिर से पांव तक जब चलता है तो इसमें बदबू पैदा होती है, जैसे भेड़ों के रेवड़ की होती है किन्नी बुरी सड़ी बू होती है, ऐसी बू होती है। जो कामी पुरुष है उसकी जिसमें बू आती है, हजार चंदन हजार खुशबूएं बतले फिर वैसी बू की बू। क्रोध जिसके अंदर वेग मारता है, ऐसी बू आती है उसके जिस्म से जैसे कपड़ा धोख रहा हो। जिसके अंदर लोभ का वेग चलता है जबरदस्त सुबह से शाम तक, उसके जिस्म से ऐसी हुआ जैसे मच्छी की बू आती है। हर एक ख्याल का वेग का असर। कहते कभी हमें बदबूएं थी इंदों के घाट पर, अब खुशबू हुआ। जो रूहानी पुरुष है उसके जिस्म को सुनो, जैसे धीमी धीमी खुशबू चमेली की आती है, हल्की है। वो तेल नहीं बढ़ता, वो सेंट नहीं बढ़ती, ख्याल का सब। सो फरमा रहे हैं अबको परमल बहे अंतर वासना बसाई। अब अंतर में खुशबू है, महक है, आनंद है, निजानंद है। अब बू नहीं रहे, इस गति को पा गया। अब बताओ ऐसे पुष्प, यीशु मसीह साहब ने कहा ऐसे पुरुष के दामन को टच कर जाने से जीवन पलटा था। ऐसे महापुरुषों ही की तारीफ वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी कर रहे। सो काल महात्मा की नहीं, माफ करना, ऊपर से सेंट भी लगा लिए, शक्ल भी बना ली, खूब ये वो भी कर लिए। अरे भाई बाहर की बनावट से क्या होगा, दुनिया तो शायद धोखे में आ सकती है, मगर प्रभु धोखे में नहीं। गुरबानी में आया है लोभ पति ने कछु न होया ना ही रामायणा। लोगों के पति आने से कुछ नहीं बनेगा, दुनिया सारी खुश होगी तो क्या। वो राम जो अंतर घट घट में बैठा है उसको तुम नहीं धोखा दे सकोगे। हमारे जो फरमाया करते थे कि वो ताकत जो अंतर में बैठी है वो अभुल है, अभुल गुरु करता। वो जब तक हमको फिट ना देखें तो रास्ता नहीं देती, ना वहां छात्रों की रसाई है ना बनावटी बातें बनाने वालों की रसाई है। हजार ज्ञान ध्यान बाहर मुखी कर लो, अंतर का हृदय जब तक साफ नहीं होगा वो रास्ता नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं देता है, बात। तो फरमा रहे हमारी गति ऐसी अब बन चुकी है, शुक्राना कर रहे हैं गुरु की। देख
मानस जन्म दुर्लभ है जग में खटिया आए।
अब ये कुछ अपना बयान करके है जिंदगी का तजुर्बा। हर एक इंसान जो कुछ बयान करता है वो अपना तजुर्बा बयान करता है, जो देखा जो करके। तो कहते हैं अब उपदेश देते हैं, ऐ भाइयों मानुष जन्म बड़ा दुर्लभ। तुम जगत में आए हो, मानुष जन्म आपको मिला है, चाहिए इससे कुछ फायदा उठाना। खटिया आए इससे परमार्थ हासिल करो। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरी वक्त है जो आपको मिला, अनमोल वक्त है, इससे फायदा उठाना। परमार्थ किसको कहते हैं? जो सबसे बड़ा अर्थ हो, फायदा हो। और वो कौन सा फायदा है सबसे बड़ा, जो कभी ना फना होने वाला? देखिए अगर आपको एक आदमी है उसका बाहर एक्सीडेंट हो गया, बड़ी आला पोशाक पहन रहा, वो फट गई, क्या कहते, कोई फिक्र नहीं मैं बच गया, कहीं जिस्म کہ لات بعد میں ٹوٹ جائے تو کہے فکر نہیں میں بچ گیا ہوں، اس سے بھی زیادہ قیمتی. جب بہت سخت بیمار ہوتا ہے کہتے ہیں پربھو میرے پران لے لے، پرانوں سے بھی زیادہ ایک اور عزیز چیز ہے وہ ہمارا اپنا آپ ہے، اس کا پربھو کے ساتھ جڑنا جو ہے یہ سب سے بڑا فائدہ، اپنے آپ کو جاننا اور پربھو کو پہچاننا. کہتے بھائی مانس جو بڑے بھاگوں سے ملا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم کس طرف لگے پڑے، وٹ ڈز اٹ پروفٹ اے مین ٹو گین دی پوزیشنز آف دی ورلڈ اینڈ لوز ونز اون سول؟ کیا ہوا ساری دنیا کے تم مالک بن گئے، ہر چیز ناممکن مان لیا بن گئے، اور اپنے آپ کو نہیں جانا تو کیا جانا، جنم برباد گیا. انسما روح جسم سے نکلے گی پچھتاؤ گے، روتے تو آئے تھے جاتے بھی روتے چلے گئے. منشی ان بڑے بھاگوں سے ملا، اس لیے آیا بھائیوں سے پورا فائدہ اٹھاؤ. جس غرض کے لیے منش جیون آپ کو ملا ہے اس غرض کو حاصل کرو. مانس جنم اور یونیوں میں فرق کیا، ایک ہی کس میں وہ ویک زبردست ہے، آکاش تک بڑا پربل ہے. ست اور اسد کا یہ نرنا کر کے ست کو گرہن کر سکتا ہے اور اسد کی طرف سے منہ موڑ سکتا ہے. یہی پرارتھنا وید بھگوان میں آئی ہے، پربھو ہم کو ست اسد سے ست کی طرف لے. کیا ہے بھائی پراپت مانک دے ہریا گوبند ملن کی تیری بریا، بڑے بھاگوں سے یہ منوش جیون آپ کو ملا. سمجھے 84 لاکھ گیا جون کی یہ سردار جون ہے، اس میں تم کیا کر سکتے ہو، پربھو کے ملنے کا وقت ہے. گوبند ملن کی تیری بریا، اور کسی یونی میں تو آپ یہ کام نہیں کر سکو. یہ سب جنوں کی یہ اشرف المخلوقات ہے، انسان کو اپنے شرف کو سنبھالنا چاہیے. وہ شرف کس بات میں ہے، اپنے آپ کو جانے اور پربھو کو پہچان. تو تھی ست نام کی گوتی، آئے آتما تو ست نام کی گوت والی تھی، کر کیا رہی ہے من چوڑے کے ساتھ لا کر اندوں کے گھاٹ پر ہر وقت گندگی میں پھر رہی. یہی بات ہوئی نا، اور کیا ہوئی. تو کہتے مانس جنم کو بھاگوں سے ملا ہے، اس سے فائدہ اٹھا. اب گرو امر داس شاہ اپنے زندگی کے تک بنا پر سب لوگوں کو ہدایت کر رہے ہیں کہ مانس جنم بڑے بھاگوں سے ملا، جگت میں تم آئے ہو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے کچھ لاہ لے کر چلو. اور وہ لاہ کیا ہے، گرو ارجن صاحب فرماتے ہیں جس وکر کو لین تو آیا رام نام سنتن گھر پایا. اے بھائی جس وکر کو تو لینے کے لیے دنیا میں آیا ہے وہ رما ہوا نام ہے، کہاں سے ملتا ہے، کہتے سنتوں کے گھر سے. لاد کھیپ سنتا سنچال اور چھاٹ بکھیا جنجال، بند بندھا کر ان کے ساتھ چل پڑو، سب بکھیا جنجالوں کو چھوڑ چھاڑ کر. یہی کرائسٹ نے کہا لیو آل اینڈ فالو می، سب طرف سے ہٹ ہٹا کر اس کام کو کر لو. بھائی وہ یہ نہیں کہتے کہ جنگلوں گھر بار کو چھوڑو جنگلوں کی راہ لو، وہ کہتے دنیا میں رہتی اس کام کو بھی بھائی ساتھ کر لو، 24 گھنٹے ہیں 2-4 گھنٹے اس طرف بھی لگا لو، دونوں ہاتھ لڈو یہاں بھی اور مر کر بھی، اس زندگی کے ممے کو حل کر لو گے جیو پلٹا کھا جائے گا. تو یہ گرو امر داس جی صاحب یہ فرما رہا ہے.
مانس جنم دولمب ہے جگ میں کھٹیا آئے، پورے بھاگ ست گر ملے ہر نام دھیائے.
کہتے ہیں یہ منش جیون سے پورا فائدہ کون اٹھا سکتا ہے، جس کے بڑے اونچے بھاگ ہو، کوئی انبھوی پکش مل جائے، ست کی سروپ ہستی مل جائے، پورے بھاگ سدگر ملے ہر نام سے آئے، اور وہ ہم ہری کے نام کے ساتھ لگا دے، ہم نام کے دھیانے والے بن جائیں. منش جیون کا وہی بات جو گرو ارجن صاحب نے کہی، رام نام سنتن گڑھ پایا. کہتے نام کو دھیانے والے بن جاؤ. نام کے دھیانے والے کب بنو گے، جب سدگر ملے گا. سدگر کس کو کہتے ہیں، جو ست سروپ ہستی، سدگر ست سروپ ہے، جو آتم تتو درشی، جنہیں آتم بودھ کو پایا ہے، اپنے آپ کو جانا ہے، پربھو کو پہچانا ہے، اس کا موت پیس بن چکا، पोलराइज गार्ड है कहो। मनुष्य जीवन से पूरा फायदा केवल वही लोग उठा सकते हैं जिनको मनुष्य जीवन में सदगुरु मिल जाए, कोई जागता पुरुष मिल जाए। ये मन इंद्रियों के घाट पर बह रहा है, डूब रहा है, सो रहा है, कोई ऐसा पुरुष मिल जाए जो खुद निकला हो तुमको उससे ऊपर ला सकता हो। बात नहीं हमारा आलम खुफ्ता तो हम खुफ्ता खुफ्ता रहा खुफ्ता कह कुन देदा सारा जहां सोया पड़ा है। अरे भाई तू भी साथ सोया पड़ा, अब सोए हुए को सोया हुआ कैसे जगा सकता। सवाल आलिम हो या फाजिल हो, जो मन इंदु के घाट पर बह रहा है न खुद निकला है न दूसरों को निकाल सकता। तो इसलिए क्या कहा, मुक्ते सेवे सो मुक्त हो। किसी मुक्त पुरुष की सोबत में जाओ, सेवा करो, हुक्म की बजावरी करो, तुम भी मुक्त हो जाओ। तो कहते हैं मनुष्य जीवन से पूरा फायदा उठाना चाहिए। वो कब होगा, अगर बड़े ही ऊंचे भाग जाएंगे तो सदगुरु मिल जाए, सदगुरु हरि नाम को ध्याने, हम नाम के ध्याने वाले बन जाए। यही गुरु नानक साहब ने फरमाया, जिन्हें नाम ते हाया गए मुशक्कत कहाल, नानक ते मुखुजले केती छुटी नाम। जिन्होंने नाम को ध्याया है, नाम पावर के साथ लगे हैं, उसका रस लिया है, उस महारस को पाया, उनके जीवन की मुशक्कत सफल हो गई, जीवन यात्रा सफल हो गई, उनके अपने मुख मालिक की दरगाह में उजले हो गए, उनके साथ और अनेकों जीवों का उद्धार हो गया। गुरुमुख कोट उधार दादे नाम एक कणी, नाम के एक कणी देकर ऐसा गुरुमुख लाखों करोड़ों जीवों का उद्धार करता चला गया। उसने इस मिम्मे को हल किया, दूसरों को कराता चला गया। जो उसकी बजावरी करते हैं उनकी कल्याण हो जाती है। और क्या कहते, ये नाम किसको मिलता है, सवाल ही आता है। तोर कर्म पाया तुद जिनको, से नाम हर के लागे, हे मालिक जिसके तू आप धुर से दया करे, वो इस नाम के साथ लगता। ये अक्षरी नाम नहीं, अक्षरी नाम इस पावर नाम के बोध कराने वाले। ये नाम ऋषियों मुनियों महात्माओं ने रखे, हम उन पर भी कुर्बान है। भले हार जाओ जेते तेरे नाम है, मरे नामों से चाल कर, जिस ताकत को ये बोध करा रहे हैं उसके साथ लगने से जीव की सच्ची कल्याण। तो कहते हैं बड़े ही ऊंचे भाग हो, इस नाम के साथ कौन लगता है, कहे मालिक जिसको तू आप धुर से दया करेगा। कहते क्या मिलता है, कौन नानता है, सुख हो, सुख और शांति भी रहेगी। कोई निशानी उसकी, कहते तित कर आनंद बाजे, आनंद की धुनी जाग उठेगी। बड़ा खोल खोल कर समझा रहे, ये कोई नई साइंस नहीं, माफ करना, पुरातन से पुरातन और सनातन से सनातन हम भूलते रहे, महात्मा ताजा करते रहे। समाजें इसीलिए बनाई गई थी कि इंसान मिलजुल कर आपस में चैन से दिन गुजारे और आत्म अनुभव और प्रभु अनुभव को पाए। हम भूलते रहे, कोई न कोई महात्मा आकर ताजा करता रहा, फिर हम भूले, फिर कोई और महात्मा आकर ताजा करता, फिर हम भूले, फिर और कोई ताजा। महात्मा आते रहे, हम भूलते रहे, हमें चिताते रहे। तो जब जब वो आए उस वक्त की जबानदानी में उन्होंने उस उपदेश को दिया। आज इन तक जिन्हें महात्मा है सबकी बानी हमारे पास मौजूद है। हम सबसे बड़े खुशकिस्मत इंसान हैं 20वीं सदी में कहो। अगर कहीं हम कहो 100 साल पहले आ जाते तो स्वामी जी महाराज की बानी ना होती, 500 साल पहले आ जाते तो गुरु ग्रंथ साहब की बानी ना होती। बड़ा भारी ट्रेजर ऑफ डिविनिटी है, रूहानियत का एक खजाना। ऐसे ही अगर 1400-1500 साल पहले आते तो कुरान शरीफ भी हमारे पास ना हो। इससे पहले कई महात्मा आए, अगर उनसे पहले जैन मत बुद्ध मत से पहले आते उनकी ग्रंथ पोथी ना होती, कई वैदिक टाइम से पहले आते वेद शास्त्र भी ना होते। तो खुशकिस्मत इंसान है कि नहीं हम। तो इन महापुरुषों की कहते जिनको ऐसे महापुरुष मिल गए उनका जीवन सफल हो गया। बात हो मनुष्य जीवन से सबसे बड़ा फायदा उठाने कहां से उठाया जा सकता है, राम नाम संतन कर पाए है हमारे अंतर में। प्रभु के दर्शन कहो सबसे आला आदर्श हर एक इंसान का। हम क्या कर रहे हैं, अगर काज तेरे किते न काम, मिल सात संगत पद केवल नाम। अरे भाई जितने और तू काम कर रहा है सुबह से शाम तक, वो तेरे काम आने वाले नहीं, तेरे से बड़ा तेरी आत्मा के। तुम जिस्म तो नहीं हो भाई, تم اس جسم کے چلانے والے ہو، اس مکان کے مکین ہو، آخر اس مکان کو خالی کرنا پڑے گا، تمہارے کام آنے والے نہیں۔ جنہیں اب ہم کام کر رہے ہیں، کھانا پینا، نوکری چاکری، دکانداری، بال بچوں کا پالنا، سماجک پولیس کا، یہ سب جسم سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے اس کا، یہ بھی کرو، مگر بھائی تم آتما بھی رکھتے ہو، آتما کا بھی تو خیال کرو۔ ہم مکان کو تو لیے پڑے ہیں، کھڑے ہیں، اس کے رہنے والے کی کبھی شدھ خبر نہیں لی۔ پرانے اردو کے قاعدوں میں ایک آخری صفحے پر ایک لطیفہ آیا کرتا تھا، اس میں لکھا ہے، دیکھا تو ایک شخص سجدے میں پڑا ہے اور خدا کا شکر کر رہا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کس بات کا شکر کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ بھائی کل رات چور آئے تھے اور گھوڑا چور لے گئے۔ چلے اس میں کون سی شکر کی بات ہے؟ کہتے اس لیے کہ میں گھوڑے پر سوار نہیں تھا تو مجھے بھی چور لے جاتے۔ بات تو ہنسی کی معلوم ہوتی ہے، مگر دیکھیے غور سے، وہ ہم سے سیانہ تھا، انہیں سوار کو بچا لیا تھا، گھوڑا جانے دیا تھا، اور ہم گھوڑے کو پکڑے بیٹھے، سوار غائب۔ آتما سوار ہے نا جسم کا، ہم سے تو وہ سیانہ تھا بھائی۔ تو منوش جیون بھاگوں سے ملا ہے، اور کہا چلے کتنے نہ کام۔ کہتے کون سے کام ہے جو تمہارے کام آنے والے ہیں، سوار کو بچانے والے ہیں؟ مل ساد سنگت بھج کے والا، کسی انبھوی پوش کی صحبت اختیار کرو جس کی آتما تن من کے پنجے سے آزاد ہو چکی ہے، اپنے آپ کا انبھو اور پربھو انبھو کو پا چکی ہے، اس کی سنگت پہلا کام۔ یہ جتنا کام تم کرو گی یہ تمہارا اپنے کام میں مددگار کام۔ وہ کیا کہتا ہے؟ نام کو جب تمہارے اندر نام ہے پہ اس کے ساتھ لگو، باہر سے ہٹو اندر چلو۔ اور یہی اپدیش سارے مہاتماؤں نے دیا۔ یہ کرائسٹ کہتا ہے جب تک تم باہر کی زندگی کو پکڑے بیٹھے ہو ہمیشہ کی زندگی سے خالی رہ جاؤ گے۔ جب تک اس طرف سے نہیں ہٹو گے اس ہمیشہ کی زندگی کو نہیں پا سکو گے۔ بات تو اتنی، آخر اس پن کو چھوڑنا ہے بھائی، جلدی یا دیر سے۔ اگر اب بھی چھوڑنا سیکھ جاؤ، نئی دنیا میں پیدا ہو جاؤ، موت کا خوف جاتا رہے۔ مرنے تے سب جگ ڈرے، گرو امرداسی صاحب ایک جگہ فرماتے ہیں، مرنے تے سب جگ ڈرے، جیویا لوڑے سب کو، گرو پرسادی جیوت مرے تا حکمے بوجھے کو۔ گرو کرپا سے یہ جیتے جی مرنا سیکھ جائے تب اس حکم کے کانشس کو ورکر ہو جاتا ہے، ڈیوائن پلان کا۔ نانک ایسی مرنی جو مرے تا سادھ جیون ہو، اگر ایسی مرنی جیتے جی پن کو چھوڑنا سیکھ جائے کہتے ہمیشہ کی جیون کو پا جائے۔ تو یہ کب نصیب ہوتی ہے؟ جب کوئی گرو پرسادی جیون مرے تب۔ تو ایسے انبھوی پرشوں کی ہی تعریف بے شاسک رتپوتیاں کرتی ہیں، کرتی رہیں گی۔ سو کال مہاتما کے لیے جو آج بٹا اٹھاؤ تو ہزاروں گرو اور سادھو اور سنت ملتے ہیں، یاد رکھو۔ ایسے ہی لوگوں نے، معاف کرنا، گرو ڈم کو بدنام کر رکھا۔ گرو کی اتنی اچتا کو گرو ڈم سے بیان کیا جا رہا، کارن کیا ہے؟ کہ نقل زیادہ ہے، اصل کم ہمیشہ ہی ہوتی ہے۔ تو جب تک انبھوی پوش آپ کا تعلق نہیں ہوگا، کام نہیں بنے گا۔ بات جی،
مانس جنم دلمب ہے، جگ میں کھٹیا آئے، پورے بھاگ ست گر ملے، ہر نام دھیائے، من مکھ بھولے بکھ لگے، اہلا جنم گوایا۔
آپ فرماتے ہیں کہ جو من مکھ ہیں وہ بیچارے بھول میں ہیں، من مکھ بھولے بکھ لگے، وہ زہر میں آلو، اندوں کی زہر میں آلودہ، ان کا جنم برباد چلا جاتا۔ من مکھ بھولے بکھ لگے، اہلا جنم گوایا، یہ منوش جیون برباد کر جاتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ سو من مکھ کی تعریف گرو امر داس جی صاحب نے کی ہے، سے من مکھ جو شبد نہ بچارا ہے، گر کے بھے کی سار نہ جانا۔ من مکھ وہ ہے जो शब्द या नाम के साथ जिनका कांटेक्ट नहीं हुआ, उस डिवाइन लिंक से जुड़े नहीं, इंद्रों का घाट छूटा नहीं, उस नाम का रस नहीं लिया, वो सब मनमुख और अनुभवी पुरुष का भय दिल में नहीं बसा। समझे, से मनमुख जो शब्द ना पहचाने, गुरु के भय की सार न जाने, उसको हमदान नहीं समझा, क्या है उसको क्या पता है, चलो कर ले। अरे भाई, गुरु पावर जिस्म नहीं है, याद रखो, जिस्म के पोल पर जो पावर आप सेस करती है ना, उसका नाम गुरु। वो जब नाम देती है साथ हो बैठती, हमारे हर एक आचार को देख रहे हैं, उसको हम धोखा नहीं दे सकते। हमारे हजूर फरमाया करते थे कि 5 वर्ष का बच्चा बैठा हो, उसके सामने हम कोई पाप नहीं करते, उसके सामने हम कोई पाप नहीं करते। अरे भाई, वो शाहों का शाह अंतर तुम्हारे घट में बैठा। अरे भाई, जिसको ये ख्याल हो कि वो हर जाई अंतर में बैठा देख रहा है, हमादान है, वो पाप कैसे कर सकता। जिसको गुरु मिल भी गया है, याद रखो, मिलकर भी उसकी भय अंतर दिल में नहीं बसा, कि हमारे हर एक कर्म को देखता है, हनोज दिली दूरस्थ, वक्त लगे। तो कहते हैं जो मनमुख हैं वो बेचारे भूल में जन्म बर्बाद कर जाते हैं, जिस्म का रूप बने बैठे, सारी उम्र इंद्रियों के घाट के भोगों रसों में लंपट रहते हुए बाहरी सामानों को बनाते रहे, अंत समय जब आए रोते चले जाते, वो भूल में रहते हैं और इंद्रियों के भोगों की जो जहर है उन पर चढ़ी जाती है। ऐसे लोग जन्म बर्बाद कर जाते हैं, जो गुरुमुख है उनका जन्म सफल हो जाता है। गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुरसेती सन्मुख हो, जो हर वक्त गुरु के हाजिर हजूरी में रहे, सामने या दूर का सवाल नहीं, ऐसे पुरुष मनुष्य जीवन से पूरा फायदा उठा जाते।
मनमुख भूले बिख लगे अहला जन्म गवाया, हर का नाम सदा सुख सागर, साचा शब्द ना भाया।
कहते जो हरि का नाम है वो हमेशा के सुख देने वाला समुद्र है,